तभी पीछे से आवाज़ आई। अरमान और माहिरा दोनों लॉन के दरवाजे से अंदर आए। नूर और सादिया को साथ खड़े देखकर अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, बड़ी गहरी बातें हो रही हैं। नूर ने संभलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस रेहान भाई की बात हो रही थी। अरमान ने चुटकी ली, अच्छा तो तुम्हारे रिश्ते रेहान भाई से इतनी जल्दी ठीक भी हो गए? बकवास मत करो अरमान, सादिया ने उसे टोक दिया। चलो अंदर चलते हैं, ताई अम्मी अंदर ही हैं। माहिरा ने सिर हिलाया, हम लोग अंदर जाने के लिए नहीं आए, आइसक्रीम खाने चलते हैं सब। हाँ चलो, अरमान ने तुरंत हामी भरी और सादिया की तरफ देखकर कहा, तुम भी चल रही हो ना? ठीक है, चलो चलते हैं, सादिया बोली और रेहाना बेगम से परमिशन लेने अंदर चली गई। माहिरा ने नूर की तरफ मुड़कर कहा, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नूर थोड़ा छिचकी, उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए होगी। तो तुम भी ताई अम्मी से ले आओ, सादिया भी लेने गई है, माहिरा ने कहा। नूर ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे रेहान भाई से परमिशन चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। उसकी बात सुनकर अरमान और माहिरा दोनों हैरान रह गए। ठीक है, अभी बात करवा देता हूँ, अरमान ने फ़ोन निकाला और रेहान को कॉल लगाया। भाईजान, नूर आपसे बात करना चाहती है। नूर ने फ़ोन लिया, भाईजान मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी, रेहान ने हैरानी से पूछा। किस बात की? सब लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? रेहान ने कहा। मैं आपकी परमिशन से ही जाऊँगी, नूर ने साफ आवाज़ में कहा। कुछ पल खामोशी रही, फिर रेहान हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है चली जाओ। नूर के चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई। सभी लोग आइसक्रीम खाने चले गए। हंसी मजाक में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन जब वे वापस लौटे तो घर का माहौल बदला हुआ था। ड्राइंग रूम में नूर की अम्मी सुल्ताना बेगम और अब्बा इकबाल साहब बैठे थे। दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। रेहाना बेगम उन्हें समझा रही थी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, बच्चे साथ गए हैं, अभी आ जाएंगे, आप यूँ पैनिक मत कीजिए। तभी दरवाज़ा खुला और नूर अंदर आई। उसके पीछे अरमान, माहिरा और सादिया थे। नूर, मेरे साथ चलो, सुल्ताना बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे में ले गई। दरवाज़ा बंद होते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। तुम लड़के के साथ आइसक्रीम खाने गई थी? नूर की आंखें फैल गईं। मैं अकेली नहीं गई थी, सादिया भाभी भी मेरे साथ थीं। इतने में इकबाल साहब भी कमरे में आ गए। इसी लड़के के साथ गई थी तू अपनी फूफी के घर? तुम्हारी फूफी की बेटी ने फ़ोन करके सब बताया है। सुल्ताना बेगम गुस्से में कांप रही थी। ये गलत है अब्बा, मैं अकेली गई थी, वो तो पीछे आया था मुझे बचाने के लिए। नूर ने पूरी सच्चाई बतानी शुरू की, कैसे वो अकेली गई थी, कैसे बात का गलत मतलब निकाला गया। बात सुनकर इकबाल साहब का चेहरा सख्त हो गया। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे नूर, चलो तैयारी करो। मगर अब्बा, वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, नूर की आवाज़ टूट गई। कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं तो कॉलेज सही, तुम हमारी नज़र के सामने रहोगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। उनके दिल में डर था, फूफी की बेटी ने जो जहर भरा था वही उन्हें बेचैन कर रहा था। रेहाना बेगम दरवाजे तक आईं लेकिन अंदर की बातें सुनकर लौट गईं। उन्होंने तुरंत रेहान को फ़ोन किया, रेहान जल्दी घर आ जाओ, बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं अभी आता हूँ, रेहान ने कहा। उधर इकबाल और उनकी बेगम दोनों वापस आ गए, मगर तब तक फरीद खान भी घर पहुँच चुका था। फरीद खान को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि अंदर क्या हुआ। उसे लगा कि शायद वो अपने घर के केस के सिलसिले में आया है, क्योंकि उनके घर का केस अभी भी चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, तुम्हारे केस का क्या हाल है, फरीद खान ने इकबाल से पूछा। इकबाल परेशान होकर बोला, बस मैं परेशान हूँ, अब नूर जहाँ चली गई है हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसे हमारे पास रहकर ही पढ़ना चाहिए। फरीद खान ने धीरे से पूछा, क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ पढ़ेगी? तभी रेहान अंदर आया, उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ेगी उतनी अच्छी डिग्री होगी, उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा और उतनी ही अच्छी नौकरी मिलेगी। दो तीन साल की बात है लेकिन पूरी उम्र के लिए असर होगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं होता, यही नूर के भले के लिए ज़रूरी है। फरीद खान थोड़ा हैरान था, उसने रेहान की तरफ देखा। जाने के बारे में ये भी इसी ने कहा होगा ना, माम देख रही हैं, मैंने कहा था कि चाचा से इसकी शिकायत करेगी, रेहान ने कहा। नूर ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने धीरे से बोला। नूर खुद समझ नहीं पा रही थी कि रेहान ने ऐसा क्यों कहा। रेहाना बेगम को भरोसा था अगर उसके बेटे ने कहा है कि वो नूर नहीं जाने देखा तो वैसा ही होगा। फरीद खान ने चौंक कर पूछा, ये क्या बात हो रही है, नूर तुम्हारी शिकायत क्यों करेगी? रेहान ने झिझकते हुए कहा, डैड आप नहीं जानते, नूर अपने रिश्तेदारों के घर चली गई थी बिना किसी को बताए। फरीद खान हैरान रह गया। अच्छा, तो मैंने अरमान को टाइम पर भेज दिया, वरना क्या होता, रेहान ने गंभीर होकर कहा। मैं इसे आपके सामने कह रहा हूँ, जहाँ से पढ़ाई के लिए आई है हमारे घर से यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं नहीं जाएगी, अगर कहीं और जाना है तो आप लोगों के साथ ही चली जाए, रेहाना बेगम थोड़ी चिंतित होकर बोली। तुम क्या कह रहे हो रेहान? रेहान ने शांत लेकिन दृढ़ता से कहा, मैम मैं सही कह रहा हूँ, मैं इसके भले के लिए कह रहा हूँ, आने वाला समय कैसा होगा कोई नहीं जानता, अगर अच्छी डिग्री नहीं होगी तो अच्छे रिश्ते और नौकरी नहीं मिलेगी, यही बात समझनी चाहिए। इकबाल ने धीरे से सहमति जताई।
ठीक कह रहा है रेहान, अगर जिस शहर में पढ़ाई के लिए आई है वहीं का मौका मिला है तो उसे पढ़ना चाहिए। जिंदगी ने इसके लिए सही सोचा होगा। छोटे शहर से ही सही लेकिन मौका मिला है। इकबाल को अच्छी पढ़ाई की अहमियत का पता था। वो जानता था कि अगर नूरजहां यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करती है तो उसके लिए बहुत से मौके होंगे आगे काम करने के लिए। फरीद खान ने सिर हिलाया। आप मेरी सख्ती से परेशान मत होइए, मैं इसे सिर्फ सेफ्टी के लिए ही सख्त कर रहा हूँ। रेहान ने इकबाल की ओर देखा। नहीं बेटा, सख्ती तो जरूरी है सेफ्टी के लिए, इतना तो मैं समझता हूँ। तो फिर ठीक है ना, आप लोग वापस जाएं, ये हमारे पास रहेगी, मैं इस पर पूरा ख्याल रखूंगा, रेहान ने कहा। बिल्कुल, रेहाना बेगम ने भी कहा। अब रेहान के सामने इकबाल और सुल्ताना बेगम दोनों चुप हो गए। उन्हें भी लगा कि जब रेहान इतना कह रहा है तो यही सही है। फरीद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आप लोग खाना खाकर जाएं। इकबाल और सुल्ताना बेगम ने धीरे से हामी भरी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।